अगली सुबह जब आयु की आंख खुली तो आरव ने उसे अपनी बाहों में ले रखा था। आयु गुस्से में उसे घूरने लगी। आयु ने आरव से अलग होने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे काफी कसके पकड़ रखा था। गुस्से में आयु उसके हाथ पर मारने लगी। आयु के ऐसा करने पर आरव की नींद टूटी। उसने जल्दी से आयु को छोड़ दिया था। वो हड़बड़ाकर बोला, सॉरी, वो मुझे नींद में पता नहीं चला। वैसे तुम तो काउच पर सो रही थी ना, फिर बेड पर यहां मेरे साथ क्या कर रही हो? तुम ना बहाने मत बनाओ, तुम हमेशा मेरे साथ यही करते हो, आयु ने उसे गुस्से में देखते हुए कहा। हमेशा? मैंने कुछ नहीं किया जो तुम मुझ पर इस तरह इल्जाम लगा रही हो, आरव ने हैरानी से कहा। उसे पुराने जन्म की बातें याद जरूर थीं, लेकिन अब कब क्या हुआ था इतना भी वो याद कहाँ रखने वाला था। आयु ने उसकी तरफ देखकर सार्कास्टिकली सिर हिलाकर कहा, इतना ना मासूम बनने की जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ, रात को उल्टी सीधी हरकतें करते हो, चाहे बीच पर हो या फिर ड्रिंक करने के बाद गाड़ी में। उन दोनों बार में ही तुमने मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ किस किया था, और अब इस तरह बाहों में लेकर सो रहे हो। अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम ये सब भूल कैसे सकते हो। अभी इन बातों को टाइम ही कितना हुआ है, आयु गुस्से में उसे डांट रही थी। आरव ने गहरी सांस लेकर धीरे से कहा, हाँ, टाइम ही तो कितना हुआ है। बस हम दोनों की शादी हुई, उसके बाद में बच्चे पैदा किए, फिर अलग हो गए, उसके बाद वापस करीब आए और फिर से तुम्हें दो बच्चे होने वाले थे, उसके बाद हम मर गए, हमने फिर से जन्म लिया, बड़े हुए, फिर से शादी की, बस इतना ही टाइम हुआ है। उसके यूं बड़बड़ाकर बोलने पर आयु ने इरिटेट होकर कहा, ये क्या अजीब बातें कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, जो कहना है थोड़ा तेज और क्लियरली कहो। आरव ने आयु की तरफ देखा और शांत लहजे में कहा, कुछ नहीं कह रहा, तुम फ्रेश हो जाओ, आज हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने का नाम सुनकर आयु के चेहरे पर चमक आ गई। तो क्या तुम मुझे वापस मुंबई छोड़ने जा रहे हो? हम मुंबई जा रहे हैं ना आरव, आयु ने एक्साइटेड होकर पूछा। जब आरव ने नामे सिर हिलाया तो आयु की सारी एक्साइटमेंट पल में गायब हो गई। आरव ने जवाब में कहा, अभी मेरा काम यहाँ पूरा नहीं हुआ है, जब पूरा हो जाएगा तब मुंबई छोड़ाऊंगा। आज हम बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं ताकि तुम्हारा मूड अच्छा रहे। आरव उसे घुमाने का नाम लेकर डॉक्टर जेन के क्लिनिक ले जाने वाला था। वो उसके टेस्ट करवाना चाहता था ताकि जल्द से जल्द आयु की नेक्स्ट थेरेपी करवा सके। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। अचानक उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसके ऐसा करने पर आरव घबरा गया। उसने आयु को दोनों हाथों से पकड़कर पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? थोड़ी वीकनेस फील हो रही है, एक्चुअली सुबह उठने के बाद मैं कुछ मेडिसिन्स लेती हूँ, ऐसा लगता है जैसे काफ़ी टाइम से उन्हें लिया नहीं है, तो चक्कर लग रहा है। क्या तुम मुझे वो दवाइयाँ ला दोगे आरव? आई प्रॉमिस, मुंबई जाते ही मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी, आयु ने परेशान स्वर में कहा। आरव आइज रोल करके बोला, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और मैं तुम्हें दवाइयाँ ला दूंगा, मुझे लिख कर दो तुम्हें कौन सी दवाइयाँ चाहिए। आयु ने तुरंत एक नोटपैड पर आरव को कुछ दवाइयाँ लिख दी थीं। आरव समझ गया था कि आयु कौन सी दवाइयों की बात कर रही है। पिछले जन्म में फिजिकली वीक होने की वजह से आयु कुछ सप्लीमेंट्स लेती थी ताकि उसकी बॉडी स्ट्रांग रह सके। हालांकि इस बार आयु बिल्कुल फिट थी, लेकिन उसकी यादें और दिमाग इस वक्त पुराने जन्म में उलझा था, तो उसकी बॉडी भी उसी हिसाब से रिएक्ट कर रही थी। आरव ने भी उसे कुछ बताना सही नहीं समझा। आयु के दिए कॉफी और नाश्ता ऑर्डर करने के बाद आरव दवाइयां लेने के बहाने बाहर निकला। इस वक्त वो अपनी गाड़ी में बैठा था और उसने तुरंत आर्या को कॉल किया। आर्या बेबी, मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन की पिक्चर्स भेज रहा हूँ, एक्चुअली आयु ने मुझसे ये मंगवाई हैं। तुम्हें नहीं पता होगा पर लास्ट बर्थ में वो थोड़ी वीक थी, आरव आर्या को समझाने की कोशिश कर रहा था। तभी आर्या उसकी बात बीच में काटकर बोला, डैड, मुझे मॉम के बारे में सब कुछ पता है, मैंने उनकी सारी मेडिकल फाइल्स पढ़ी हैं, अयान अंकल ने उन्हें अभी भी संभाल के रखा है, और मॉम जिन मेडिसिन्स की बात कर रही हैं उनके बारे में भी मुझे पता है, आप उन्हें लाकर दे दीजिए, वो नॉर्मल सप्लीमेंट्स हैं, इससे उनकी बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। आर यू श्योर? मुझे थोड़ा डाउट हो गया रहा है, वो बिल्कुल ठीक है, ये सब उसके दिमाग का खेल है, पुराने जन्म में उलझी है तो उसे यही लग रहा है कि वो वीक फील कर रही है और उसने अपनी दवाइयाँ नहीं ली, आरव ने परेशान स्वर में कहा। आर्या उसकी परेशानी समझ सकता था, उसने आरव को तसल्ली देते हुए कहा, कहा ना डैड, सब ठीक है, आप दवाइयाँ लाकर दे दीजिए और किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। आर्या के कन्फर्म करने पर आरव ने आयु को वो मेडिसिन मंगवा दी थी। आयु फिजिकली वीक फील कर रही थी, इसीलिए आरव आज उसे बाहर लेकर नहीं गया। दोपहर के लगभग 11 बज रहे थे। माहिरा होटल में किसी के आने का इंतजार करते हुए चहलकदमी कर रही थी। लगभग 5 मिनट बाद उसका मैनेजर दो आदमियों के साथ पहुंचा। उन्होंने किसी इंसान को कैद कर रखा था, उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसे देखते ही माहिरा के चेहरे पर इविल स्माइल थी। जल्दी से इसका मास्क हटाओ, मुझे इससे बात करनी है, माहिरा क्यूरियस होकर बोली। उसके कहने पर मैनेजर ने आदमी के चेहरे से मास्क हटाया। वो डॉक्टर जेन थे। कल माहिरा उनके थेरेपी सेंटर आई थी, इस वजह से वो माहिरा को देखते ही पहचान गए। उसके उन्हें इस तरह किडनैप करने पर वो माहिरा को अजीब नजरों से घूर रहे थे। तुम तो वही हो ना जिसने कल मेरा सेशन खराब किया था, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो गई और अब तुमने मुझे यहाँ इस तरह किडनैप करवा लिया, आखिर चाहती क्या हो तुम, डॉक्टर जेन गुस्सा होकर बोले। माहिरा उनके पास आई और तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, मेरा छोड़िए,
आपकी बात करते हैं। मैंने सुना है आप बहुत कुछ चाहते हैं। आपको एक एडवांस लैब चाहिए जहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकें। एक्सपेरिमेंट करने के लिए जल्दी से पेशेंट भी नहीं मिलते, तो आपको लोगों की भी जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट ने आपके प्रोजेक्ट को बेकार बोलकर इसे आगे बढ़ाने से मना कर दिया। आपके खिलाफ स्टे भी लगा हुआ है और अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने के लिए आपको फंड भी काफी सारा चाहिए। कितनी सारी प्रॉब्लम है ना। वैसे आपकी थियोरी काफी अच्छी है। इंसान का पुनर्जन्म होता है, बस जरूरत है तो उसे सब याद होने की। माहिरा ने डॉक्टर जेन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। वो हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। उन्होंने माहिरा से धीरे से पूछा, मेरे बारे में तो बता दिया, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मुझे किडनैप करके यहाँ बुलाया है तो जरूर तुम्हारा भी कोई मकसद होगा। हाँ, मेरा मकसद बहुत बड़ा है, आपकी तरह छोटा नहीं। आप बस मेरी बात मानिए, मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवा कर दूंगी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंसानों से लेकर एडवांस लैब तक सब कुछ। पैसों की भी कोई कमी नहीं रहने दूंगी, बस आपको मेरी छोटी सी बात माननी होगी, माहिरा ने जवाब दिया। वो अजीब नजरों से डॉक्टर जेन की तरफ देखते हुए उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर जेन को इस तरह का ऑफर पहली बार मिला था। उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं और तुरंत हाँ कह दिया। उन्होंने माहिरा से पूछा, ठीक है, मुझे मंजूर है, तुम अपनी शर्त बताओ। मेरी शर्त सिंपल सी है कि कल जो लड़की तुम्हारे पास थेरेपी के लिए आई थी उसे वापस बुलाओ और उसकी थेरेपी शुरू करो, माहिरा ने जवाब दिया। वो उसका हस्बैंड, वो वैसे भी उसे मेरे पास लाने वाला है, फिर तुम्हें मेरी इतनी डिमांड्स पूरी करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर जेन ने कहा। हाँ पता है मुझे लाने वाला है। क्या उसे जो भी याद आता है वो उससे पहले तुम्हें बताती है या जैसे जैसे उसे याद आता है वैसे वैसे वो बोलती जाती है, माहिरा ने उत्सुकता से पूछा। वो उस थेरेपी के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी।
डॉक्टर जैन ने जवाब देते हुए कहा, जैसे जैसे याद आता है वैसे वैसे बताती जाती है। कल वो बीच सेशन से उठ गई थी, इसका मतलब उसे कभी भी उठाया जा सकता है, माहिरा ने आगे पूछा, जिस पर डॉक्टर जैन ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। हाँ ऐसे किया जा सकता है, पर काफी रिस्की है। इससे इंसान यादों के जाल में फंस कर रह जाता है, जैसे कि वो रह गई है। कई बार ऐसा करने पर सामने वाले की जान पर भी बनाती है। जैसे ही डॉक्टर जैन ने सब बताया, माहिरा के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। उसने डॉक्टर जैन से उसी अंदाज में कहा, यही तो मैं चाहती हूँ कि या तो वो मर जाए या अपने ही यादों के जाल में फंस कर रह जाए। मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूंगी, पर बदले में तुम्हें उसे बीच थेरेपी में उस जगह पर जगाना है जहां मैं बताऊंगी। थेरेपी के टाइम उसका हस्बैंड उसके साथ मौजूद होगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, डॉक्टर जैन ने जवाब दिया। आरफ की पास्ट हिस्ट्री जानने के बाद वो उससे पंगा नहीं लेना चाहते थे। उसके हस्बैंड को वहां से हटाया भी जा सकता है, बस तुम वही करो जितना मैं कहूँ। मैं तुम्हें बताऊंगी कि उसे किस पॉइंट पर जगाना है। अगर उसके हस्बैंड ने कुछ करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें बचाऊंगी, माहिरा ने उसे अश्योरिटी देते हुए कहा। डॉक्टर जैन पहले तो हिचकिचा रहे थे, फिर उन्होंने माहिरा की बात पर हामी भर दी। उनके हाँ कहते ही माहिरा ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मेरा नाम माहिरा लूथरा है। जैसे ही माहिरा ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, डॉक्टर जैन के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। आरफ की यादों के जरिए वो जानते थे कि माहिरा कौन है और किस हद तक जा सकती है। अब तो उनके पास पीछे हटने का भी रास्ता नहीं था, मजबूरी में उन्होंने हाँ कह दिया। क्या लगता है माहिरा कौन से पॉइंट पर आयु को जगाना चाहती है, कोई आइडिया है आपको? पाठ पढ़कर समीक्षा कर देना।